ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारे विदेशी भाई बहनी कृपया ध्यान दें कि आपका एफएम नंबर है 106.5 और जिन भी विदेशी भाई बहनों के पास एफएम रेडियो नहीं हो, वह हमारे दीपक भाई पीछे बैठे हैं, आप उनसे ले सकते हैं। जिनके पास भी एफएम रेडियो नहीं है, दीपक भाई पीछे बैठे हैं, उनसे ले लीजिए। ओम शांति।
ओम शांति। आज भोलेनाथ बाबा का सोमवार भी है और विशेष भारत का गणतंत्र दिवस भी है। जितना हम भारत का स्वतंत्रता दिवस गर्व से मनाते हैं, उमंग से मनाते हैं, इतना ही खुशी से, उमंग से और गर्व से भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। आज के दिन तो दिल्ली में बहुत सुंदर सुंदर टैब्लो, वो झांकियां सजती हैं, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बैठ करके देखते हैं। तीनों सेनाएं अपने कर्तव्य दिखाते हैं, जो सब देखते हैं। तो आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस 77th गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा ने मुरली में निश्चय कराया है। बार बार बाबा का इशारा यही है कि तुमको पढ़ाता कौन है, तुमको मिला कौन है। जो आधा कल्प से भक्ति करते आए, बुलाते आए, जिसकी इच्छा रखते आए, जिसके लिए बहुत मन्नतें मानी, वो आकर तुम्हें पढ़ा रहा है, वो तुम्हें मिला है। तो कितना अंदर से खुशी होनी चाहिए। और बाबा जो हमें कहते हैं वो करना चाहिए। बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हें इतनी अनुभूति हुई है, तुमको भगवान मिला है, वो औरों को भी अनुभूति कराओ, उनको भी बताओ कि भगवान खुद आया हुआ है। हमको पढ़ाने वाला और कोई मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। बहुत महिमा बाबा ने खुद की भी बताई है कि बाबा क्या क्या है। बाबा ने 5-7 बातें बताई हैं, लेकिन सब अपनी डायरी में अगर नोट करें, विचार सागर मंथन करें, तो बहुत पॉइंट्स निकल सकती हैं कि बाबा क्या नहीं है। बाबा ने स्वयं ही अपना परिचय दिया है कि मैं क्या क्या हूं। तो हम सुनेंगे बाबा के शब्दों में कि बाबा क्या क्या है, और हम अपना भी सोचेंगे कि हमारे लिए बाबा क्या क्या है और बाबा क्या नहीं करते हैं। सब कुछ करते हैं। तो आज है 26 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है, योग बल की लिफ्ट की कमाल क्या है? वो तो हम सब अनुभवी हैं कि योग की कमाल क्या क्या है। हम बाबा के बने, बाबा से योग लगाया तो हमारे जीवन में क्या क्या कमाल हुई। लेकिन बाबा ये कहते हैं, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, उड़ती कला में आ जाते हैं, सतयुग के देवी देवता बन जाते हैं। अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में, क्योंकि 5000 वर्ष की भेंट में ये संगम युग क्या है, 1 सेकंड जितना ही है। और जब हम निश्चय कर लेते हैं कि हम बाबा के हैं, बाबा के बन गए, मन वचन कर्म से पूर्ण बाबा के समर्पित हो गए, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो ये कोई कम कमाल तो नहीं है। हमने इतने जन्म पाप किए, जो भी पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ सकते हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं वहां के नीचे बैठिए, क्योंकि हॉल थोड़ा छोटा पड़ रहा है। आइए आगे आ जाइए। तो जो बाद में आएंगे ना उनको पीछे जगह मिल जाएगी। जो भी अभी आए हैं, कुछ गुजरात से भी आ रहे हैं, आई ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। क्या क्या महिमा है बाबा की, तो रोज महिमा गाते हैं ना, क्या क्या महिमा है। वो ज्ञान का सागर सत चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्टें दी जाती है। शिफ्टें माना उसकी विशेषताएं, उनके गुण। तो जो भी बाबा के गुण गाएंगे वो सागर बोलेंगे, वो कम नहीं है, वो बेहद भी है, अथाह है। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य है सब जानते हैं, क्या जानते हैं, बाबा ज्ञान का सागर है और मनुष्य क्या है, बाबा ने बहुत रॉयल कहा है, अज्ञान का सागर नहीं कहा है, भक्ति का सागर कहा है। बाबा कहते सब मनुष्य जानते हैं हम हैं भक्ति के सागर। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उसको मान मिलता है। जो ज्यादा भक्ति करता है या कुछ अपने जीवन को श्रेष्ठ बना के दिखाता है या कोई चमत्कार भी दिखाता है तो लोग कितना मानते हैं उसको, कि वो ये तो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख और सतयुग में है, यहां है कलयुग में है भक्ति और दुख, सतयुग में ज्ञान नहीं होगा लेकिन ज्ञान का सुख। बाबा ने कहा सतयुग में है ज्ञान का सुख। अभी जो हम ज्ञान लेते हैं उसकी प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलती है। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान है, सतयुग में ज्ञान नहीं होता। तो यह महिमा सिर्फ आप एक बाप की है और बच्चों की महिमा भी है। बच्चों की महिमा क्यों है? एक बाप की तो महिमा है लेकिन बच्चों की महिमा क्यों है? क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो इतनी दुनिया में करोड़ों लोगों में बाबा ने कितने थोड़ों को चुना है, तो महिमा बच्चों की है ना। अथवा यात्रा सिखलाते, बाबा कहते मैं पढ़ाता भी हूँ और यात्रा भी सिखलाता हूँ। बाप ने समझाया है दो यात्राएं हैं। कौन सी दो यात्राएं? यात्राएं दो हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं ना। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छीछी चीजें कोई नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ कभी काशी का चक्कर लगाते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की बहुत भक्ति करते हैं। अब भगवान तो एक होना चाहिए, सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। तो एक जगह हम आकर के बैठ गए बाबा के पास, इसलिए हमें चारों तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। हमारे चार धाम हम करते हैं ना। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा तीर्थ किसको मानते हैं? कौन सा तीर्थ है? शिव बाबा की यादगार का है, बद्रीनाथ, बनारस। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है जिसको शिव की पुरी भी कहते हैं। कहते हैं ना वो भगवान का निवास स्थान है। चारों तरफ जाते हैं परंतु जिसका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिसकी भक्ति करते हैं उसकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं, इसलिए उसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जानते नहीं है वो कौन है, शिव बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसने कब ऐसा कर्म किया जो अभी इतनी महिमा है, उसको क्यों भक्ति करते हैं, हम इतनी भक्ति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उसकी जीवन कहानी को न जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। घर में भी बनाते हैं, देवियों की पूजा कितने करते हैं। जब नवरात्रि आती है तो देवियों की कितनी पूजा करते, रात रात भर करते हैं। मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उसको बहुत श्रृंगारते हैं। वही अंबाजी में मंदिर है नजदीक में, वो भी देवी का मंदिर है, मूर्ति कितनी छोटी है लेकिन उसके ऊपर इतने कुर्बान जाते हैं, सच्चा सोना ही खूब चढ़ा देते हैं। जब समझ से इससे हमारी मनोकामना थोड़ी पूरी हुई, अल्पकाल की श्रद्धा पूरी हुई तो बस उस पर कुर्बान जाते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इसकी बायोग्राफी बताओ, लक्ष्मी कौन है, उसकी क्यों पूजा करते हैं, पूछो तो कहानी सुना देंगे शास्त्र की। लेकिन उसका परिचय, उनसे क्या हमें प्राप्त होगा, हम क्यों भक्ति करते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। सिर्फ बताएंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी, बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई नहीं जानते। बाबा आकर के हमको टोटल ज्ञान दिया, सतयुग में लक्ष्मी नारायण कितना समय राज करेंगे, राम सीता कितना समय करेंगे, बाबा कहे ये किसी को भी पता नहीं, ये कोई जानते नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। उनको और विधि पता नहीं है, परिचय पता नहीं है, तो समझते हम यात्राएं करेंगे भगवान मिल जाएंगे। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है, शास्त्र भी क्यों करते पढ़ते हैं कि हमें भगवान मिल जाएंगे, ये शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने लिए। परंतु भगवान कहाँ है ये पूछो कि भगवान से मिलना है लेकिन भगवान है कहाँ, तो कहेंगे सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी है तो फिर क्यों इतना घूमते हो, फिर क्यों हर जगह ढूंढते हो। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये माना देवी देवता बनते हैं, बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, कितनी बड़ी बात है कि लोग इतनी यात्राएं करते, भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते और वो खुद आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है तब अभी आकर के हमको बाबा मिलते हैं, क्योंकि हमने भी आधा कल्प भक्ति की। सबसे पुराने भक्त तो हम ही है ना, सबसे ज्यादा भक्ति हमने की तब हमको भगवान मिले। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप कौन हैं। बाबा ने समझाया है, बाबा ने खुद का भी परिचय दिया मैं कौन हूँ, हमें और हमारा भी परिचय दिया कि तुम आत्मा बिंदी हो। आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सतयुग में राज्य करके गए, फिर क्या हुआ, सतयुग में राज्य करके गए। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया था, हम उसमें नहीं थे। क्रिश्चियन लोग मानते हैं गॉड ने पैराडाइज बनाया, उसमें हम नहीं थे, लेकिन हमारे बाबा ने जो स्वर्ग स्थापन किया उसमें तो हम होंगे ना। भारत में पैराडाइज था, उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। क्यों अच्छी बोला? कि फिर भी मानते हैं कि भारत पहले स्वर्ग था। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। बाबा ने एक बहुत गूढ़ रहस्य बताया है कि भारतवासी ही दुखी हैं क्योंकि भारतवासी ही सुखी थे। वो इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं, सुखी है मानो उनके पास बहुत धन है। पहले तो वो गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, फिर वृद्धि होती जाती है, तो वृद्धि होगी तो धन भी तो आएगा ना। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। ज्यादा मेजॉरिटी कंट्री तो क्रिश्चियन है ना। फाउंडेशन है, उनका भी फाउंडेशन कौन है? देवी देवता घराना। वो फिर यहां इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की अडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। जब बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो कितना छोटा ग्रुप था, उसको ही बाबा ने तैयार किया। उनसे देखो कितने ब्राह्मण हो गए, सारे विश्व से बाबा ने ब्राह्मणों को चुन लिया। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना, शिव बाबा ने पहले एक को पकड़ा, सारी सृष्टि में केवल एक। सोचो वो एक व्यक्ति से इतना बड़ा वृक्ष बना देना, नई दुनिया की स्थापना कराना, ये कितनी बड़ी बात है। एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है, बाबा ने ये भी बताया और भी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। त्रेता अंत तक भी देवताएं जितने थे वो अब सब बनने हैं, सब यहाँ आने हैं, सब बाबा के बनेंगे। कुछ न कुछ परिचय लेके जाएंगे, अंजलि तो ले जाएंगे ना। थोड़ा भी पुरुषार्थ किया, थोड़ा भी मेरा बाबा माना, तो वो फिर पद तो पाएंगे ना, कुछ छोटा मोटा भी। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं? ऐसे तो देखो सारे वर्ल्ड की आत्माएं तो बाबा की संतान है ना। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। सतयुग में पार्ट बजाएंगे वो फिर त्रेता में आएंगे, त्रेता में और आत्माएं आएंगी, फिर वो दोनों मिलकर द्वापर युग में आएंगे तो द्वापर युग में और आत्माएं भी आएंगी। इस झाड़ का पहले पहले थुड़ है, थुड़ माना तना, तना है। जड़ कौन है? देवी देवताओं का। सभी ने झाड़ का चित्र देखा है ना, तने में देवी देवता धर्म दिखाया है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है, माना शाखाएं निकलती है और धर्मों की। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूं? क्या करते हैं बाबा? आत्मा में ही धारणा होती है, बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब पुकारा है, सतयुग में तो बाबा को बुलाया ही नहीं, याद किया ही नहीं। अगर करते तो आते बाबा, अगर सतयुग में बुलाते हम याद करते तो भी नहीं आते। एक बार अभी बाबा ने कहा मैं आके क्या करता, इसलिए आता ही नहीं हूँ। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब पुकारा है, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, बच्चों ने पुकारा तो बाबा ने जवाब दिया, हाँ बच्चों सुना। सुना तब तो आए, क्या चाहते हो? बाबा कहते हैं सुना, अब क्या चाहते हो? कोई नहीं होता है, दूर होता है तो उसको बुलाते हैं, फिर कहते आया, लेकिन अब क्या काम है? तो बाबा कहते हैं सुना, अब क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बच्चों का जवाब भी बाबा ही सुना रहे हैं। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो पावन तो सतयुग को कहा जाता है, इसलिए बाबा फिर सतयुग बना रहे हैं, वो भी हमको ही निमित्त बना करके। ये भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं, ये बातें भी बाबा खुद बताते हैं कि तुमने मुझे पुकारा मैं आया, अब तुमने क्या कहा अब मैं क्या करता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तो तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। कौन से दो सन्यासी हैं? वो है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। हम भी सन्यासी हैं, लेकिन हम राजयोगी सन्यासी हैं। उनका है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं, उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? इसलिए फिर घूम फिर के वो एक गुफा बनाई, उसमें बिठाया। शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं, अभी तो बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो, राजाओं का जो हर स्टेट के राजाएं हैं उसको भी बाबा का मैसेज देते हैं, राजाओं को बाबा के घर में बुलाते हैं। एक अष्टावक्र गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को आया वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाया। वो उसके सुनाते हैं ना अष्टावक्र की कहानी, उसने 12 वर्ष की आयु में राजा जनक के दरबार में कहते शास्त्रार्थ कर जीत पाई थी, तो फिर कहा ढिंढोरा पिटवाया कि मुझे कोई भगवान से मिलाए। बाबा कहते वो यही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना बाप से मिलाने के लिए, तो हमारी ही यादगार ये शास्त्रों में कहानियों के रूप में है। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। हम क्यों सेवा करते हैं कि वो बच्चा बाबा का बने, सुख ले, जो सुख हमने लिया, जो शांति हमने ली वो भी ले। कई लोग पूछते हैं, अरे आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो, गांव-गांव में जाते हो, सबको सुनाते हो, आपको क्या मिलता है, आप क्यों करते हो? तो बाबा ने जवाब दिया है कि तुम औरों को मिलाने की कोशिश करते हो। वो छुग्गी दादी थी एक बड़ौदा में, उसको पूछ कहते थे, अरे आप इतनी मेहनत इतनी आयु में क्यों करते हो? तो कि हमारे भाई बहन गुम हो गए हैं, उसको हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए इतनी मेहनत करते हैं। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो, शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। फिर उनको पक्का कराओ, जिसको ज्ञान देते हैं कि तुम एक को याद करो, सबको नहीं, औरों को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे। शुरू में जब बाबा ने अपना ये योग का विधि सुनाई तो एक दो को देखते देखते ही ध्यान में चले जाते थे, इतनी ऊंची अवस्था होती थी। इतने अभी भी ऐसा बाबा कहते हैं, तुमको देखकर उसको बाबा की याद आए। तो शुरू में ऐसे बाबा ने चरित्र करा के दिखाए थे, इतनी मस्ती थी, इतनी खुशी थी। तब तक यहाँ तक भी आए तो भी जब बड़े दादियों को देखते थे तो एकदम मस्त हो जाते थे, वंडर लगता था। बाप था ना इसमें, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता थी। तो बाबा को कोई देखते थे तो गुम हो जाते थे। सब कहते अपना ये भी अनुभव सुधारना, हम बहुत अंदर भर के आते थे, बाबा को ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन बाबा के सामने आते थे मस्त हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे। बाप था ना इसमें तो वो चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना तो डबल शक्ति आ गई। ब्रह्मा बाबा के अंदर जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो डबल शक्ति थी, दो थे बाप और दादा, तो इतनी पावर कि सबको देखते ही मस्त हो जाते थे। कब्रिस्तान बनाते थे, देखा है ना आप लोगों ने, अभी भी कई बार भट्टियों में कब्रिस्तान करवाते हैं, मतलब एकदम लाइन में सुला देते हैं, फिर दादियां या कोई टीचर है वो घूमती थी, उसको दृष्टि देते देते वो सोए सोए दृष्टि लेते थे। कोई तो इतने मग्न हो जाते कि वो हाथ पकड़ के जैसे वतन में चले जाते, गुम हो जाते। कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाप की याद में सो जाओ। तो बाबा ने ये सब चरित्र वहां पाकिस्तान में करवाया, कराची में करवाया, वो फिर दादियों ने यहां सिखाया, तो अभी तक भी भट्टी में वो करते हैं। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। क्या चतुराई थी? अनुभव कराया, निश्चय कराया, अपना बनाया। वो अनुभव से इतना जो दादियों का समूह था, ग्रुप था, वो भाई बहनों का, वो यहाँ आए और इतनी बेहद की सेवा की, इतना बल भरा। इसको फिर कई जादू समझने लगे कि ब्रह्मा कुमारी में जाओ तो जादू हो जाता है, सब उसके बन जाते हैं, क्योंकि मस्त हो जाते थे। ये था शिव बाबा का खेल। ये बाबा को नई दुनिया बनानी थी, यज्ञ स्थापित करना था, इतने बच्चों को इकट्ठा करना था, ये सब शिव बाबा का खेल था। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, और क्या है। आज बाबा ने अपनी महिमा खुद बताई है कि ये सब खेल क्या है। बाबा जादूगर, सौदागर, रत्नागर, धोबी भी है, सोनार भी है, और क्या क्या है। लिस्ट निकालो डायरी में तो बहुत कुछ निकलेगा। वकील भी है। देखो बाबा ने अपने क्या क्या क्वालिफिकेशन बताई। वकील क्यों है बाबा, वकील क्यों है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। वो जो कैद में होते हैं वकीली, तो अपना अच्छा सब स्टेटमेंट दे करके अपने असील को छुड़ाते हैं, तो बाबा सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो कितने बड़े वकील हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, आओ हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उसका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बताते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था, वो शांति से बैठे थे, हमने आकर के बुलाया। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो ये है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला है, पांच विकारों में घिरे। फिर उसके चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है। फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा बाबा एक नहीं थे, हम सब थे उनके साथ। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। हम बच्चे जानते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा ही जाकर के भविष्य में नारायण बनते हैं। इसका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असुल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नरक के मालिक है। अभी नरक के भी मालिक क्या कहेंगे, नहीं मालिक एक तो नहीं है। अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं। पहले बाबा ने कहा भक्ति मार्ग का तीर्थ कौन सा है, बड़ा तीर्थ बनारस बताया। अभी संगम पर आकर के बाबा ने क्या बताया, इसलिए लिखते भी हैं। आबू सब तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। इसलिए लिखा हुआ भी है ना, आबू सभी तीर्थों में महान तीर्थ है, भारत सभी देशों में महान देश है। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम चले जाते हैं। वह है जड़ यादगार, ये है चैतन्य यादगार। जब तुम चैतन्य में वो बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये चक्र देखने से सारा ज्ञान आ जाता है, चक्र का जो गोले का चित्र है उसमें बाबा कहते सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं तो अभी देखो कितने धर्म हैं। यह है आयरन एज, अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम्हें पारस बुद्धि थे, तुम्हें पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। हमारा ही पूरा खेल है, पूरा चक्र हमारा ही है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हुआ हूँ, और तुमको कहता हूँ बाबा आया, हमने बुलाया वो आया, अभी कहता है मैं जो कहता हूँ वो करो। और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही है, सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है सब विकारी। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है, मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ तो मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वो सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे क्या हो, जिन हो, वो जिन को कहते हैं ना सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो बाबा ने कहा तुम भी जिन हो, चढ़ते हो उतरते हो फिर चढ़ते हो फिर उतरते हो। जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। अब कोई सारा दिन कहेगा मुझे काम दो तो क्या करेंगे, तो सीढ़ी चढ़ो और उतरो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं, भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। बाप समझाते हैं ये तो अनादि खेल है, तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं, 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। तो अभी तो योग की लिफ्ट मिली है, बाबा का साथ मिला है, श्रीमद का हाथ मिला है, कलाएं कम होती जाती है। चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं उतरने में तो बहुत टाइम लगता है ना। ऐसे देखो उतरने में कम टाइम लगता है, चढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन ये सृष्टि की जो सीढ़ी है वो उतरने में टाइम लगता है, चढ़ते हैं लिफ्ट से। अच्छा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है एक जन्म में। अब जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? हम सबने कहा ना बाबा को, हाँ बाबा हम जरूर बनेंगे, परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर 5000 साल बाद वही होगा, फिर बाबा को याद करेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है, बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। तो बाबा ने होमवर्क दे दिया, क्या करना है। अब सुनेंगे वरदान। ये देखो कितनी बड़ी बात है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। सामने है गम की दुनिया और अनुभव करना है बेगमपुर का। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम के अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। बाबा को ये इस बात का भी हमेशा अफसोस रहता है कि बच्चे संग दोष में आते हैं और खो देते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ है तो सफलता गले का हार है, अव्यक्त इशारे। सभी ने किया होगा ना पूरा मास इस बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव। बाबा ने रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स इसमें दिया है। अभी तो 3-4 दिन है। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी इसका ये सब्जेक्ट ये है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। मुक्त नहीं होंगे, युक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने आज कितनी रमणीक बातें सुनाई, 3 कहानियां सुनाई। वो 3 कहानी याद रखेंगे तो पूरी मुरली याद हो जाएगी। कौन सी कहानियां बाबा ने कही। छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसको कुछ याद नहीं रहता है तो कहानियां सुनाते हैं, तो बाबा ने भी कहानियां सुनाई। ओम शांति।
ओम शांति। मेडिटेशन हॉल में बाबा की मुरली सुनने में ज्यादा मजा आता है ओम शांति भवन में। यहाँ का अपना सुख है, वहाँ का अपना सुख है। तो आज गणतंत्र दिवस है तो अभी योग के बाद बाहर गेट के पास झांकी बनी है, खास विशेष आज के दिन के लिए, क्योंकि पोलो ग्राउंड में भी वहाँ परेड होगी और वहाँ भी झांकियाँ निकलेगी। तो अधिकतर तो जो बाबा के बच्चे बनाते हैं झांकी, उसको फर्स्ट प्राइज मिलती है क्योंकि प्राइज भी देते हैं। तो पीस पार्क, पांडव भवन, हॉस्पिटल, सब तरफ के भाइयों ने मिल करके ये झांकी बनाई है। तो अभी योग के बाद सब बाहर जाएंगे, वहाँ गेट के पास वो झांकी बनी है, उसका अवलोकन भी करेंगे और उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। ठीक है, तो योग के बाद सब जाएंगे और डबल विदेशी भाई बहने 5-2 मिनट बैठेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। ओम शांति। डबल फॉरेनर्स प्लीज स्टे बैक एंड आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर गेटिंग द प्रोग्राम यू विल गो टू द गेट where there is a tableau which is going to be inaugurated for 26th of January. Option.